सुंदर अब चरण अरविंद रे।
हरे हरे कृष्ण।
उठी उठी गोपाला उठी 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 गोपाला नंद के लाला यशोदा दुलाला नंद के लाला यशोदा दुलाला उठी उठी गोपाला उठी उठी गोपाला अरुणोदय धला उठी उठी गोपाला उठी उठी गोपाला के लाला यशोदा दूलाला नंद के लाला यशोदा दूलाला यशोदा दूलाला यशोदा दूलाला जागो मोहन प्यारे मोहन प्यारे
Jagat कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
कसामला टाकुनी गेला रा टाकुनी गेला कसामला टाकुनी गेला टाकुनी
सुसत नाही का
काकुनी गे लारा
Get out of
श्यामला टाकुनी गे राम टाकुनी गे राम श्यामला
टाकुनी गे राम
श्यामला टाकुनी गे करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुञ्जाद्गोष्ठं निशान्ते प्रवशति कुरुते दोहन्नान्नशनाद्यां प्रातः सायं च लीलां विहरति सखिभिः सङ्गविचारयन् गः मध्याह्ने चाथ नक्तं विलसति विपिने राधया धा अपराह्ने गोष्ठं याति प्रदोषे रमयति सुहृदो यस कृष्णो अवतान्नः रूप गोस्वामी प्रभुपाद की रचना है ये अष्टकालीय लीला स्मरण मंगल स्तोत्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी अपने गोविंद लीलामृत नामक ग्रंथ में अष्टकालीय लीलाओं का विस्तृत वर्णन किए हैं अष्टकालीय आप समझ सकते हो अष्ट मतलब आठ कालीय काल पीरियड्स अष्टयाम भी कहा है इन लीलाओं को, अष्टयाम राधा कृष्ण की अष्टयाम लीलाएं। और उनका स्मरण भगवान का स्मरण हम जो भी विधि को अपनाए हैं या कुछ निषेध उससे भी हम बचते हैं। विधि निषेध शास्त्र में कुछ विधियां है कुछ निषेध है, बस शास्त्र में दो ही बातें पाई जाती है, एक विधि दूसरा निषेध, ये करो ये नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। तो उनका परिणाम उनका फल स्वरूप साधक को भगवान का स्मरण होता है, तो उद्देश्य तो भगवान का स्मरण है। गोपियां भी अगर उनकी ख्याति है प्रसिद्धि है सभी भक्तों में उत्तमा भक्ता है गोपिया, क्यों सततम स्मर्तव्यः विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित्त। बस गोपिया दो ही बातें जानती है, उनकी फिलॉसफी उनका तत्वज्ञान बड़ा सरल है, दो कार्य करती है, एक है सततम विष्णु स्मरणम, विष्णु का मतलब यह कृष्ण का सदैव स्मरण और विस्मर्तव्य न जातुचित, एक बात उनका स्मरण एक बात और दूसरा विस्मर्तव्य, विस्मरण कभी नहीं, सदैव स्मरण विस्मरण कभी भी नहीं। तो जो सदैव स्मरण करते हैं भगवान का, तो क्या उनसे भगवान दूर है या वे भगवान से दूर है, जब उनको स्मरण हो ही रहा है। हमारी चेतना जब तल्लीन है भगवान के स्मरण में, चेतः संगिनी विजयते सर्व इंद्रियानि कृतिहि। हरिनाम महात्म्य में भी एक स्थान पर रूप गोस्वामी और ये बात चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद आई, वो श्लोक रूप गोस्वामी प्रभुपाद का, उसी में एक पद है, वो कहते हैं ये जो प्रभु का नाम जब भक्त के हृदय प्रांगण में प्रवेश करता है, वो भक्त जब प्रभु का नाम स्मरण करता है, चलता रहेगा क्या वो क्या है? तो तो चेतः प्रांगण संगिनी, चेतना को, चेतना के कोर्टयार्ड में, प्रांगण में जब नाम कीर्तन, नाम स्मरण होता है, तब क्या होता है? विजयते, व्यक्ति जितेंद्रिय बनता है, सर्व इंद्रियानि कृति, सभी इंद्रियों की जो कृतियां है, सभी इंद्रियों के जो व्यापार है वो ठप हो जाते हैं। इंद्रिया तो है, शरीर है, मन है, इंद्रिया है, लेकिन वो निष्क्रिय हो जाती है। कब? जब चेता संग प्रांगण संगिनी, चेतना के प्रांगण में, मन में भी कह सकते हैं, चेतना में, मन में, हृदय में जब भगवान का नाम नृत्य करता है, मतलब और सब सांसारिक स्मृतियां, उन सब का विस्मरण होता है। संसार का जब विस्मरण होगा तभी तो भगवान का स्मरण होगा। संसार का भी स्मरण और भगवान का, ये तो उस व्यक्ति की स्थिति की तुलना, एक ही व्यक्ति ने दो बोट में पैर रखे हैं, दो नौका में एक ही साथ पैर रखते हुए खड़े होने जैसी बात है, मतलब बीच में लटक रहा है, ना घाट का ना क्या, ना घर का ना घाट का कुत्ता। संसार के विस्मरण के साथ भगवान का स्मरण, जितना अधिक संसार का विस्मरण उतना ही अधिक भगवान का संस्मरण। संसार से जितनी भी अधिक अनासक्ति, संसार से अनासक्ति, भगवान से आसक्ति, असक्त अनासक्त, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो जब भगवान का स्मरण होता है तो वो स्मरण करता व्यक्ति भगवान के साथ ही होता है, वो व्यक्ति भगवान के साथ होता है, मतलब उसकी उसकी आत्मा भगवान के साथ है, फिर शरीर जहां तहा हो, शरीर तो फिर एक मिट्टी का ही ढेला है या घड़ा है, तू बेड़ा कुंभार और तुमने बनाया है घड़ा, लोगों तो संसार के साथ रहेगा, संसार तो है तो, और आत्मा शरीर से अलग, शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग, उसे नारियल जैसे जब सूख जाता है नारियल, तो उसको हम हिलाएंगे, जब कच्चा भी होता है तब उसमें जल होता है, जल की ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन अधिक सूखने पर उसका जो शेल है वो कोकोनट का कवटी उससे भी वो अलग होता है, और अंदर वो कोकोनट वो उसकी आवाज आती है, है तो वो शेल में लेकिन अंदर होते हुए वो उससे चिपका नहीं है, उससे से हट के है। तो वैसी स्थिति आत्मा की होती है। कमल का पत्र जल में होते हुए भी वो अलग रहता है, या जल से वो भीगता नहीं। तो हुआ तो भगवान का स्मरण, तो ये ध्यान हुआ, फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो भगवान का स्मरण जब हो रहा है, ये सर्वोच्च स्थिति है। जैसे गोपिया भूलना चाहेगी तो भी भूल नहीं सकती। गोपिया कभी कभी सोचती, गए वो तो भूल गए हमको, जब से मथुरा गए हैं वहां की लेडीज अब मथुरा, अब उनके साथ उनका अंग संग प्राप्त होता होगा, वे हमको भूल गए। क्यों न हम भूल जाती है, चलो हम भूल जाते हैं। कौन कौन भूलना चाहती है, हाथ ऊपर करो गोपियों। शायद हाँ हम भी भूल जाते हैं, चलो भूलते हैं। तो हाथ ऊपर करती करती उनको फिर स्मरण आ जाता है, उस लीला का, उस वहां पर हम मिले थे, वो पीतांबरात अरुण बिंब अधर पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भूलने का प्रयास करती है, चाहती है, वे भूलते तो क्यों हम न, क्यों न भूले हम, चलो हम भी भूलती है। भूलने का प्रयास करने पर भी वो सफल नहीं होती भगवान को भूलने में, और हमारा क्या हाल है। स्मरण करने का खूब प्रयास होता है किंतु बस हम भूल ही जाते हैं। तो ये अष्टकालीय लीला स्मरण कुछ भक्त अपनी साधना बना लेते हैं। वैसे भगवान के अष्टकाली लीला का स्मरण, तो घड़ी की ओर देखते हैं, ओह 9:30 नाउ, अब क्या करते होंगे भगवान। उनको पता होता है इस बात से, भगवान के लीला क्रम से अवगत होते हैं, जहां भगवान इस समय वन में जा रहे अपने मित्रों के साथ। अब मध्याह्न के 12 बजे हैं, कहां होंगे भगवान, कौन सी लीला। आहा, इस समय वे राधा कुंड में होने चाहिए। आहा, इस 5:30 इन द इवनिंग, कहां होंगे भगवान, अब लौटते होंगे गायों के साथ ब्रज की ओर। और इसे 10:30 PM कहां होंगे भगवान। और कृष्ण बलराम मंदिर के पीछे जो कृष्ण बलराम ट्री है, वहां से अब सेवा कुंज की ओर आगे बढ़ते होंगे भगवान। चलो जाती है उनको, वहां मिलती है हम। तो इस प्रकार कुछ भागता, प्रगत भागता। वैसे ये प्रगत भक्तों का, भक्तों की यह साधना है, ये लीला स्मरण की साधना, अष्टकालीय अष्टयाम लीला का स्मरण। तो श्री कृष्ण और राधिका, वैसे उनके लिए तो आराम है नहीं, उनकी लीला 24 घंटे व्यस्त रहते हैं। उनके लीला का क्रम बना हुआ है, जैसे आप लोगों के भी दिनचर्या होती है, लोग उठ जाते हैं 8:30 बजे, जब भूख लगती है पेट में तो उठ जाते हैं, फिर बाथरूम में कुछ बाथरूम सॉन्ग चलते हैं तो गाते हैं, बाथरूम में गाते हैं, तो कभी बाथरूम में गाते हैं, बस कुछ ओम नमः शिवाय कर दिया और कुछ कह दिया, फिर लोगों का अखबार की राह देखते हैं, दिनचर्या है, कब आता है, और न्यूज़पेपर वाला, न्यूज़पेपर तो है लेकिन चाय नहीं है तो अखबार मीठा नहीं लगता जब तक चाय के साथ उसको मिक्स नहीं करते हैं। ये लोग घड़ी की ओर देख के 9:30 डिपार्चर फॉर द ऑफिस, फिर लंच ब्रेक, इंस्टेंट कॉफी पी ली रात, लाइक दिस, फिर 5:30 घड़ी की ओर देखते रहते कब कब छुट्टी होती है, फिर सायंकाल को फिर देख लिया कुछ दूरदर्शन भी, और फिर सो लिए। इस प्रकार जैसे लोगों की दिनचर्या रूटीन चलता, लोग रूटीन में फंसे हैं, तो भगवान भी कुछ कम नहीं है, भगवान का अपना भी रूटीन है, एग्जैक्टली ऑन सच एंड सच टाइम, इस समय इतना समय हुआ तो आगे की लीला मंच में परिवर्तन होगा, दृश्य बदलेगा, और जिनके साथ भगवान अकेले तो लीला नहीं कर सकते, लीला मतलब एक तो स्थान चाहिए, मन चाहिए, स्थली होनी चाहिए, स्थल हो तो लीला होगी, फिर अनुचित वातावरण चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, हर लीला के साथ कुछ विशेष भाव जुड़े होते हैं, कुछ लीला में दृश्य है उसमें भगवान सख्य भाव का अनुभव करते हैं, सखा भाव, अपने मित्रों के साथ खेलना है तो खेलने के लिए फिर उचित क्रीडांगन है या स्थली है, उसका समय है, और उसी प्रकार के परिकर है भगवान के सखा भाव में, सखा सख्य भाव या रस, भगवान अलग अलग रसों का रस, रस जूस, अलग अलग आस्वादन, वैरायटी से आनंद आता है, कभी सख्य भाव में तो कभी वात्सल्य भाव, भगवान का माता पिता के साथ जो रस है, संबंध है, भाव है, और सख्य भाव, वात्सल्य भाव है, उसका भी समय है, उसके भी स्थान है, निश्चित स्थान है। और फिर माधुर्य भाव, वृंदावन में इन तीन रसों की प्रधानता है। है तो वैसे 12 द्वादश अलग अलग रस, इसमें से 7 गौण और 5 प्रधान कहे हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये प्रधान रस कहलाते हैं। और इन प्रधान रसों में भी वृंदावन में तो 3 ही रसों की प्रधानता है, और उसमें भी माधुर्य रस, परकिया भावे जहा ब्रजेत प्रचार। वृंदावन कहोगे तो वहां तो परकीय भाव का प्रचार है, प्राधान्य है, माधुर्य लीला, गाढ़ा रस है। एक हुआ जूस, और फिर उसको जब उबालते हैं तो कई उसमें जो मोलेसिस और भी जो द्रव्य होते हैं वो जब अलग होते हैं, अलग किया जाता है तो उसकी चीनी बन जाती है, ये शुगर कैंडी बनती है। और फिर उसमें ये कुछ मिला दो, कैम्फर मिला दो, और कुछ मिलाने से उसका स्वाद और भी बढ़ता है। इस प्रकार वर्णन किया है कैसे एक रस से दूसरा रस अधिक मधुर। और इन सभी रसों में उन्नत उज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस तो माधुर्य रस है, तो अलग अलग रस है, अलग अलग आस्वादन है, उसमें अलग अलग परिकर है, अलग अलग स्थान स्थलिया है उस आस्वादन के लिए या उन लीला संपन्नता के लिए। तो यही ये अष्टकालीय लीला स्मरण का विषय है। कौन सी लीला भगवान कहा खेलते हैं, कौन सा समय होता है, और कौन से भक्त उसमें सम्मिलित होते हैं, कौन सा रस का भगवान आस्वादन करते हैं, निशांते प्रविशति लिखा है। निशांते तो अष्टकाल है, एक तो उषः काल है, उषः द डॉन, सूर्योदय के पहले उषः काल है, फिर प्रातः काल है, हरि बोल, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम राम, क्या हुआ? डॉन कहने से भी आपको नींद आ गई है, इतने जल्दी थोड़ी उठना होता है। और उस समय की जो नींद है, और मीठी नींद कहते हैं, मीठी नींद तो उषा काल की नींद मानी जाती है, कुछ मानते हैं। अलार्म बज भी गया तो उसको थप्पड़ मार के उसको शाप देते हैं। भगवान तो द्वारिका में उठ जाते थे, मुर्गे की आवाज, मुर्दे की नहीं, मुर्गे की, मुर्दा तो बोलेगा नहीं। तो वैसे रानियां पसंद नहीं करती थी मुर्गे की आवाज, मतलब अब प्रभु का अंग संग प्राप्त नहीं होगा, प्रभु उठेंगे। प्रातःकालीन पंछी भी बोल रहे हैं, ऐसे बर्ड्स, पंछी तो जग जाते हैं। पंछी जगे हैं मतलब हमारा भी जगने का समय हुआ, ऐसा संकेत है। प्रकृति या संसार हमको स्मरण दिलाता है, पंछी उठे हैं, उनका चहकना कलरव प्रारंभ हुआ है, मतलब तुम भी उठो। और इस लीला में हम देखेंगे भगवान भी थोड़े समय के लिए विश्राम करते हैं तो पंछी आ जाते हैं, और पंछियों की कलरव सुन के भगवान राधा और कृष्ण जग जाते हैं। तो उषा काल, फिर प्रातः काल, फिर अपराह्न कहते हैं, अपराह्न बिफोर नून जिसको कहते हैं, फिर मध्यान्ह काल, कितने हो गए गिन रहे हो? चार हो गए। फिर पूर्वान्ह मध्यान्ह के पहले पूर्वान्ह, फिर मध्यान्ह, फिर अपराह्न, बिफोर नून, नून आफ्टर नून, इस प्रकार तीन काल। फिर संध्या काल, सायंकाल, फिर प्रदोष काल, और फिर रात्रि का काल, रात्रि या निशा, निशा या रात्रि एक ही बात है। तो ये आठ काल है, उषा काल, प्रातः काल, पूर्वान्न, मध्यान्न, अपराह्न, सायंकाल, प्रदोष काल और रात्रि, ये आठ काल है। मतलब ये आठ काल है, पीरियड्स है, जिन कालों में भगवान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिकरों के साथ अलग अलग रसों का, लीलाओं का आस्वादन करते हैं। इसमें से दो काल थोड़े अधिक काल है, उसमें अधिक घंटे है, उसमें वे है मध्यान्ह काल और रात्रि का काल। ये 10:30 इन द मॉर्निंग, 10:30 बजे दिन के समय से 3:30 3:30 बजे आफ्टरनून, ये जो काल है ये काल बड़ा है। और वही काल उसी समय रात्रि का जो काल है, रात्रि के 10:30 से 3:30 बजे तक का जो काल है, ये रात्रि का काल या निशा काल कहा है। और ये दोनों काल जो है ये माधुर्य लीला के काल है। ये दो समय भगवान राधा के साथ, गोपियों के साथ लीला करते हैं। बचे हुए जो काल है, छह काल, ये 2.5 घंटे के होते हैं। इन 8 कालों में से वैसे 4 काल तो भगवान घर में रहते हैं या नंदग्राम में रहते हैं। 4 काल तो नंदग्राम में बिताते हैं और 4 काल वे वन में बिताते हैं। उन 4 कालों में से 2 तो बताए, मध्यान्ह और रात्रि का काल जो राधा और गोपियों के लिए वो समय होता है, वो तो वन में होता ही है। और भी जो दूसरे पूर्वान्न और अपराह्न काल भी भगवान वन में ही बिताते हैं। जैसे हम कह रहे थे कुछ दिन पहले कि भगवान का स्मरण करना है तो कोई विषय तो चाहिए। यू रिमेम्बर माई फ्रेंड, याद है मेरे मित्र को याद करते हो आप? यू रिमेम्बर? तो नेचुरली कहा विच फ्रेंड, कौन से मित्र की बात कर रहे हो आप? ओ दैट वन, ओ वो मित्र वहां रहता है, उस गांव में रहता है, उसकी एड्रेस है, उसका वैसा दिखाई देता है, उसका फोन नंबर ये है, ये नौकरी करता है फलाना, ये उसके ये रिश्तेदार है, उसकी ये हॉबी है, उसका वो छंद है, उसका ये है, उसका वो है, वो लंगड़ा है, कहने से फिर तुरंत याद रहे, ओ दैट वन, दैट लंगड़ा वन। वैशिष्ट होता है हर व्यक्ति का, क्या होता है वैशिष्ट होता है, कुछ विशेषता होती है, कोई रंग है या कुछ वेशभूषा है उसकी, कोई कुछ खासियत होती है, वैशिष्ट होता है। तो कृष्ण का भी अपना अपना वैशिष्ट है, कृष्ण मतलब वो पर्सनैलिटी है, उनका रूप है और उनका नाम है, गांव है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, और नंद जी क्या है बपैया है, और यशोदा जिनकी मैया है, ये सब चलता है, और लूट लूट दधि माखन खायो वाले क्या करते हैं, लुटेरे है, फिर याद रहेगा कृष्ण कैसे है, लुटेरे हैं, लूटते हैं, क्या लूटते हैं, मक्खन, और तो कोई संसार में और कोई मक्खन का चोरी नहीं करता है, चोर तो होते हैं क्या क्या चोरी करते हैं, लेकिन मक्खन का चोरी तो कृष्ण ने किया, स्वयं भी खाते हैं और फिर बांटते हैं बंदरों को, ए ले लो तुमने हमारी इतनी सारी सेवा की पिछले लीला में, जब मैं राम बन के आया था, मैंने तो सेवा ही ले ली तुमसे, लेकिन कुछ बदले में दिया तो कुछ नहीं, लेकिन अब देता हूं, ले लो मक्खन खाओ। भगवान बड़े कृतज्ञ है, भगवान कृतघ्न नहीं है, कृतज्ञ है, किए हुए उपकार सेवा को भगवान कभी नहीं भूलते, किसी की भी सेवा को भगवान कभी नहीं भूलते, याद रखते हैं, कोई छोटी सी भी सेवा है, जो गिलहरी की सेवा, और जब सेतु बंधन हो रहा था तो गिलहरी आई, हनुमान ने तो हम तो इतनी बड़ी सेवा करे, गेट आउट, हट जाओ, मरना है। तो राम दूर से देख और सुन रहे थे, तो हनुमान, हे हनुमान कम हियर कम हियर, हनुमान जब जब आए पास में तो राम डांटे फटकारे, क्या समझा तुमने, जहां तक मैं समझता हूं तुम्हारी सेवा और उस गिलहरी की सेवा तो एक ही एक जैसी ही है, क्योंकि जितनी शक्ति सामर्थ्य मैंने तुम्हें दिया उसका तुम उपयोग कर रहे हो, जितना शक्ति सामर्थ्य उस गिलहरी के शरीर में है वो भी 100%, वो भी अपनी सेवा अपनी शक्ति का उपयोग कर रही है, तो तुम दोनों की 100% सेवा चल रही है। तो क्वांटिटी से नहीं देखा जा सकता, क्वालिटी को देखो, क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस अधिक महत्वपूर्ण है, क्वांटिटी कभी कम अधिक हो सकती है, उसकी मात्रा कोई इसके कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो मेरे मित्र का अगर आप मेरे मित्र का आपको स्मरण करना है, तो आपको जानकारी है तो फिर कौन है वो मित्र, कैसा दिखाई देता है मित्र, कहाँ रहता है मित्र, क्या फोन नंबर उसका, ये वो, फिर उस मित्र का स्मरण संभव है। केवल मित्र का स्मरण करो कहेंगे तो कठिन होगा, कहां से शुरुआत करेंगे, तो स्मरण के लिए कुछ मिर्च मसाला तो चाहिए, कुछ टॉपिक चाहिए तो उसका स्मरण करेंगे। कोई विषय हो, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते। ध्यायतो विषयान, तो ध्यान करने के लिए कोई विषय चाहिए। तो वैसे सांसारिक लोगों के लिए उनके विषय है ध्यान के विषय, इंद्रियों के विषय। तो भक्तों को भी भगवान का ध्यान करना है तो विषय चाहिए, तभी वे स्मरण कर सकते हैं। मायावादी अद्वैतवादी स्मरण नहीं कर सकते भगवान का, कैसे स्मरण करेंगे? ज्योति को देखते रहेंगे क्या? इसमें कोई वैरायटी तो नहीं है ब्रह्म ज्योति? या कभी दीपक ही जला के बैठते हैं ध्यान करें, किसका ध्यान करेंगे? अग्नि का ध्यान कर रहे, फिर जलेंगे उसमें प्रवेश करके, अग्नि बनेंगे। अग्नि का ध्यान क्यों करें? अग्नि जिनसे उत्पन्न होती है वो प्रभु का ध्यान करो, उनके शक्ति का कुछ ध्यान कर रहे हो, लेकिन शक्तिमान जो है उनका ध्यान करो। तो जितना अधिक ज्ञान होगा हमें भगवान के संबंध का, ज्ञान अधिक जानकारी अधिक इन्फॉर्मेशन, फिर वो इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि वो जानकारी फिर उतरेगी हमारे पल्ले पड़ेगी, हमें प्रवेश करेगी और हम कृष्ण भावना भावित होंगे, फिर भगवान का स्मरण होगा। तो चार काल भगवान नंदग्राम में रहते हैं। ये जब हम अष्टकाली लीला कह रही है, ये भगवान के नित्य लीला की बात है। फिर भगवान की प्रासंगिक या नैमित्तिक लीला भी होती है, ओकेजनल, कोई प्रसंगानुसार। फिर भगवान गोकुल में रहते हैं, भगवान प्रातःकाल में 24 घंटे भगवान गोकुल में रहते हैं, अष्टकाली लीला का प्रश्न नहीं है। भगवान जब उठी उठी गोपाला करना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है, उठते ही फिर मक्खन चोरी में लग जाते हैं। भगवान जब गोकुल में थे तो गोकुल में ही रहे, जो महावन कहलाता है। पहली बार उन्होंने गोकुल या वो महावन छोड़ा जब वो गोकुलवासी भी सभी स्थानांतरित हुए, वहां से वे छोड़े उस गांव को। वह आतंकवाद, कई सारे राक्षस आ रहे थे, विघ्न उत्पन्न कर रहे थे, तो सभी ने जब छोड़ा, सभी जब बैलगाड़ी में शक्टों में बैठ के वहां से प्रस्थान किए, तभी कृष्ण पहली बार आउट ऑफ गोकुल गए। तो 24 घंटे वे गोकुल में ही रहा करते थे और उस समय केवल भगवान को एक ही रस का, वात्सल्य रस का आस्वादन करते थे। जब छोटे थे, गोद में थे यशोदा के गोद में, तो केवल वात्सल्य रस का अनुभव किया उन्होंने। थोड़े मोटे हो गए, उम्र में बढ़ गए, तो फिर उनके मित्र हो गए, पड़ोस के घर के भी जो बालक है उनके साथ उनका मिलना जुलना होगा, खेलना प्रारंभ हुआ उनके साथ, फिर मक्खन चोरी प्रारंभ हुई। तो गोकुल लीला के अंत अंत में फिर और एक रस ऐड हुआ, और एक रस, और वह है सख्य रस। और फिर वहां से पूरे स्थानांतरित हुए भगवान और वृंदावन आए रहने के लिए। तो वहां फिर एक समय भगवान के जीवन में कृष्ण के इस लीला क्रम में सख्य भाव की प्रधानता होती है। एक समय वात्सल्य भाव की प्रधानता, जब छोटे ही बालक है, रेंगते ही है, गोद में ही लेटे हैं, स्तनपान होता है, सब खिलाना पड़ता है, कुछ स्वयं कुछ नहीं कर पाते, उस समय केवल वात्सल्य भाव। उम्र में जब बढ़ते हैं तो फिर सख्य भाव, फिर भगवान वन में जाना, घर में नहीं रहना चाहते सब समय, तो दिन में भेजती है यशोदा, भेजना भी नहीं चाहती थी यशोदा कृष्ण को वन में, वो चाहती थी कि कृष्ण उनके साथ सदैव रहे 24 घंटे 24 आवर्स। तो कृष्ण ने जो प्रस्ताव रखा था ये गाय चराने का, तो वह नंद बाबा तो मान गए, हाँ जाने दो, लेकिन यशोदा तैयार नहीं थी। नहीं नहीं, कैसे जा सकता है, इतना नन्ना मुन्ना बालक कैसा जाएगा, वन में भेज रहे हो तुम, नहीं जा सकता। ये पति पत्नी आपस में उनका संघर्ष चल रहा था, जाने दो, नहीं जा सकता। दोनों का वात्सल्य प्रेम, तो हुआ फिर अंत में जाने दिया और भगवान बन जाते हैं, वत्सपाल बन जाते हैं भगवान। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ग्वाल छोटे है तो गैया भी छोटी, गैया मतलब वत्स बच गए। तो हुआ फिर भगवान को कृष्ण कन्हैया को अपने सखाओं के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ वन में, लेकिन दूर नहीं जाना। यशोदा कहती और जल्दी आना, और हे बलराम देखभाल करो, रखवाली करो कृष्ण की, वत्सल्य भाव। सो वत्सल्य भाव की, फिर वात्सल्य भाव कुछ कम होता है, फिर सख्य भाव का वर्धन बढ़ना, तो कृष्ण फिर और उम्र में बढ़ जाते हैं, तो उनका गोपियों के साथ मिलन शुरू होता है। और ऐसा भी समय आता है कि माधुर्य लीला का प्राधान्य, सख्य भाव भी है वात्सल्य भी है प्रधानता। तो एक समय प्रधानता थी वात्सल्य भाव की गोकुल में, गोकुल से जब वे शक्टावर्त आए, शक्टावर्त नामक स्थान है वृंदावन में, छटीकरा जिसको अब कहते हैं, जहां ये दिल्ली आगरा हाईवे से फिर जहां हम लोग मुड़ते हैं कृष्ण बलराम मंदिर जाने के लिए, वह भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग भी है, वो टी जंक्शन हाईवे जा रहा है, फिर वहां से बाएं मुड़ करके जब हम वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर जाते, तो वहां वो टी जंक्शन जो है, वह छटीकरा नामक ग्राम आज भी है। छटीकरा पहले नाम तो शक्टावर्त था, शक्टावर्त गोकुल से लाए हुए जो छकड़े शकट बैलगाड़िया, तो वहां उन्होंने पार्क की और वही रहने लगे, टेम्पररी अकोमोडेशन बने वहां। तो वहां जब भगवान रहते थे तो वहां उनके जीवन में सख्य भाव की प्रधानता। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, शक्टावर से भी और आगे जाते हैं, नंदग्राम रहने जाते हैं भगवान। फिर नंदग्राम से कुछ ही दूरी पर संकेत नाम का स्थान है, संकेत
नंदग्राम और बरसाना के बीच में, आप कभी गए होंगे तो जाने से देखने से फिर लीला के स्मरण में मदद होती है। पुणे में बैठ के कथा को सुनना या पढ़ना बात एक, और फिर वृंदावन जाओ और उन लीलाओं को वही सुनाओ जहां वो लीला संपन्न हुई थी, फिर वो मजा कुछ और ही है या उसकी समझ कुछ और ही है, या वो देख के आओ फिर जब सुनोगे पढ़ोगे तो फिर वो स्मरण और भी आसान होता है। आपने गोवर्धन को जीवन में देखा ही नहीं है, गोवर्धन 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 तो थोड़ा थियोरेटिकल हो जाता है, लेकिन जब गोवर्धन जाओ परिक्रमा करो, एक दिन बिताओ गोवर्धन के साथ परिक्रमा करते करते करते, फिर पुणे लौटो और फिर गोवर्धन कहते या अब छलांग मारोगे, आओ दैट गोवर्धन, और कितनी सारी स्मृतियां फिर जगेगी मन में, उमड़ आएगी, कितना आसान होता है फिर ओ गोवर्धन का स्मरण, या जमुना में अपने स्नान किया और भी आप विश्राम घाट गए, आप ब्रह्मांड घाट गए, ये सब स्थलिया या तो जाके वहां लीला स्थल देखो, लीला का श्रवण कीर्तन करो और फिर लौट के आके फिर आप स्मरण करोगे, श्रवण करते ही फिर स्मरण होगा, श्रवण करते आपको स्मरण होगा, आप तो वृंदावन पहुंच जाओगे। आपका शरीर यहां है और आप कहां, आप वृंदावन में, तो पुनः आपको सब्जेक्ट मैटर मिली, विषय मिला भगवान के स्मरण का, आपने देखा है वृंदावन कृष्ण जन्म स्थान और तो उस धाम ने लीलाओं ने जो आपको आकृष्ट किया था, वहां जो आपकी रति आपका प्रेम जो उत्पन्न हुआ था, तो पुनः उन लीलाओं का स्मरण करने से आप पहुंच जाओगे जहां पहुंचे थे वृंदावन में, लीलाओं का श्रवण और स्मरण करते समय जहां जिस स्थिति को प्राप्त किए थे, जिस भाव का अनुभव किए थे। तो वह संकेत भी हम कह रहे थे बरसाना और नंदग्राम के मध्य में संकेत नामक स्थान है, यह संकेत राधा और कृष्ण दूर से ही संकेत करते हुए आज की लीला, उनका उनका जो भी मुद्रा है लीला है, क्योंकि पास में आके समाज के कुछ बंधन है, दोनों भी युवा युवती अवस्था चल रही है तो मिल नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, मुंह इधर है और तिरछी नजर से नये नये कोने तो चल रहा है, क्योंकि इधर कृष्ण है तो हा? तो लोग तो सहा कितनी बढ़िया है हा? इनका कोई ध्यान नहीं है एक दूसरों में, लेकिन उनका ध्यान तो केवल एक दूसरों में ही और कहीं है ही नहीं, लेकिन दिखाते हैं कि हमारा तो ध्यान उनमें नहीं है, हमारा ध्यान तो दूर से ही संकेत करके आज की रात्रि की लीला यहां पर होगी, इस वन में होगी, कदम खंडी होगी, सेवा कुंज होगी, भांडीर वन में होगी, तो उस संकेत के अनुसार भगवान वहां पहुंच जाते हैं। और जाने के पहले वैसे तो ये अलग अलग काल शुरू होते हैं, जो प्रदोष काल है, इस प्रदोष काल के अंत में भगवान को यशोदा सुलाती है, दूध पिलाती है, सुरभि गाय का दूध पिला रही है। लेकिन कन्हैया कहे, नहीं नहीं कुछ कहानी सुनाओ ना। नहीं दूध पियो, नहीं नहीं कहानी सुनाओ। हाँ एक था राजा कहती है और एक थी रानी। उस एक समय पहुंच गए, वो दंडकारण्य में पहुंच गए। गोदावरी के तट पर जब वे रहते थे, एक आ गए राक्षस। क्या कहा मैया? बेटा राक्षस आ गया। और उस राक्षस ने सीता का अपहरण किया। क्या? राक्षस ने अपहरण किया। भगवान कूद जाते हैं, लक्ष्मण बुलाते हैं, हाथ में धनुष बाण लिए। उस लीला के श्रवण से उनको राम का आवेश आ जाता है। एक युग पीछे गए, राम बने, राम के आवेश में। हे क्या कर रहे हो? आ जाओ बैठो बैठो, दूध पो, जीत पो। तुम लड़ने के लिए तैयार हो गए, तुम धनुष बांध लिया तुमने। यशोदा को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है इस बालक को। तो मुश्किल से दूध पीता है। दूध पियो दूध पियो। मैया मैया मेरी सीखा छोटी क्यों है? बलराम भैया की तो बहुत मोटी सीखा है, मेरी क्यों छोटी है? बलराम दूध पीता है, तुम नहीं पीते हो। ऐसे दूध पिलाना भी नटखट है, आलत है। तो मुश्किल से सुलाती है, दरवाजा बंद करती है उस कक्ष का। और यशोदा भी जाती है स्वयं विश्राम के लिए। और यशोदा और सभी जब सोए हैं, गाढ़ निद्रा में है, तो वैसे कन्हैया तो सोए तो थे नहीं, सोने का उन्होंने केवल स्वांग ही किया था। तो कन्हैया तो फिर पहुंच जाते हैं अपने मुरली के साथ, भांडीर बन पहुंच गए और मुरली बजा रहे। वीण चुकूज वीणुम वीणुनाद। और उसी के साथ सारे ब्रज में संदेश या आमंत्रण, लेकिन सभी के लिए नहीं आमंत्रण, ये आमंत्रण केवल गोपियों के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर गोपीज। गोपियां सब दौड़ पड़ती है, उनके घर वालों को पता नहीं चल रहा कहां जा रही क्या, उनको रोकने का प्रयास सब कुछ होता है। यहां तक कि कुछ जाने ही नहीं दे रहे हैं घर वाले कुछ गोपियों को, वो अपना शरीर त्याग देती है और जाती है, उनकी आत्मा आगे बढ़ती है। सब कुछ त्यागने के लिए बैठी है, जहां तक अपना जीवन भी कृष्ण के लिए, प्राणनाथ के लिए। तो जब पहुंचती है वहां उस वन में असंख्य गोपियां, तो ये 10:30 से लेकर 3:30 रात्रि का समय, ये राधा और गोपियों के लिए है। तो उनके सारे विहार होते हैं, श्री राधा माधव कुंज विहारी, जमुना तीर बनचारी। तो कई प्रकार के विहार क्रीड़ाएं, और उन क्रीड़ा में मुख्य क्रीड़ा तो रास क्रीड़ा, ये हर रात्रि की क्रीड़ा है रास लीला। कुछ ऐसे भी स्थान है सेवा कुंज वृंदावन में, वहां तो हर रात्रि को उस कुंज में भक्त बना के कुछ शैया बना के रखते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ रखते हैं वहां, फिर दातून भी रखते हैं कि भगवान जब क्रीड़ा करेंगे फिर अंत में उनका विश्राम होगा, तो विश्राम के लिए शैया बनाते हैं। और ये अनुभव बताते हैं कि उस शैया का किसी ने उपयोग किया और कौन करेगा, शैया का उपयोग हुआ है, वहां के रखे हुए पदार्थ किसी ने ग्रहण किए, दातून का प्रयोग हुआ है। तो हर रात्रि को ये अष्टकालीय नित्य लीला भगवान की प्रास क्रीड़ा गोपियों के साथ प्रास नृत्य संगीतमय वाद्य बज रहे हैं और गायन हो रहा है, उसी के साथ नृत्य हो रहा है। नृत्य तो वाद्य के बिना कठिन है नृत्य, तो हुआ संगीत। संगीत मतलब तीन बातें हैं, संगीत मतलब गायन, वाद्य और नृत्य। जब तक नृत्य नहीं है संगीत नहीं होता, शायद गीत हो गया लेकिन संगीत नहीं हुआ, सम्यक प्रकार से गीत गाया हुआ गीत को संगीत कहते हैं। संगीत मतलब गायन, वाद्य, नृत्य। तो रास क्रीड़ा के समय और गोपिया और राधा इतनी कुशल गायिका है और कई सारे वाद्य बजाती है, और गोपिया भी नृत्य करती ही है, कृष्ण भी नटवर है, श्रेष्ठ नृत्यकार तो भगवान ही है। कभी कभी कृष्ण को मध्य में रखती है, कहे नाचो नाचो डांस डांस, जैसे हम उस दिन मयूर मयूरों का नृत्य, भगवान उनके लिए नाचे और फिर मयूरों ने क्या किया था, उनके लिए भेंट दे दी, पुरस्कार दे दिए, हमारे पंख ही ले लो, हमारे पास और तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो पंख ही है, ले लो। और भगवान ने उसी तुच्छ पंखों को, मोर पंखों को उठा के अपने सिर में धारण किया। तो जब रास क्रीड़ा होती तो उसमें काफी सारा परिश्रम है, नृत्य में जो नृत्य करते उन्हीं को पता है, केवल 10-15 मिनट के लिए नृत्य किया तो थकान का अनुभव होता, तो गोपियां तो कई घंटों नृत्य कर रही है राउंड एंड राउंड कृष्ण के साथ, कुछ थकान का अनुभव करती है, और फिर थकान से मुक्त होने के लिए फिर या तो यमुना में या वही क्रीड़ा के स्थली के पास ही कोई कुंड है सरोवर है उसमें प्रवेश करती है, और वहां जल क्रीड़ाएं होती है, स्नान होता है, जल क्रीड़ा होती है। इसके उपरांत जब यमुना के तट पर आते हैं तो वहां शैया बनी रहती है, कुछ फ्रेश फ्रूट भी तैयार होते हैं, ये सारी व्यवस्था वृंदा देवी की होती है। वृंदा देवी भी 24 आवर्स व्यस्त रहती है, और उसके कई सारे असिस्टेंट्स होते हैं, कई सारे मैसेंजर्स भी होते हैं, वृंदावन के जो तोते हैं सभी दौड़ते रहते हैं, आपने देखा होगा मैसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलती है वहां, इंफॉर्मेशन गैदरिंग तो होता ही ना, नहीं सुना आपने, तो होता ही था। तो हुआ तो मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी तो आगे की व्यवस्था योजना बन सकती है। तो वृंदा देवी के इर्द गिर्द कई सारे असिस्टेंट्स हैं और मदद करते हैं, तैयारियां होती है। तो स्नान जब हो रहा है तो यह शैया बनी है और फल तैयार है। तो राधा माधव किशोर किशोरी नंद नंदन वृषभानु नंदिनी फल ग्रहण करते हैं और शैया पर लेट जाते हैं। अब विश्राम करते हैं, कुछ नैप है, पूरा कुछ विश्राम नहीं है। तो विश्राम कुछ पूरा भी नहीं हुआ इतने में वहां कई सारे जहां लेटे हैं वहां वृक्ष है, तो वहां कई सारे पंछी पुनः वृंदा देवी की व्यवस्था से पंछी वहां आ जाते हैं और पंछी बोलने लगते हैं। उनकी आवाज से डिवाइन कपल राधा कृष्णा जग जाते हैं। इतने में एक बंदरानी आ जाती है, कक्खटी उसका नाम, ऐसा वर्णन जिनको पता है उन्होंने उसका नाम भी दिया है, कक्खटी बंदरी। उसका वो मैसेज लेके आती है, मैसेज ये है उसमें कि घड़ी की ओर देखो देखो, इट्स 3:30 इन द मॉर्निंग, आपको जल्दी करना होगा। हे कृष्ण नंदग्राम दौड़ो, हे राधिका जाओ बरसाने। क्यों, अब कुछ ही क्षणों में क्या होगा, कुछ जगाने आएगी यशोदा, जगाने आएगी। रात्रि को मैंने सुलाया था, अब नींद तो पूरी हुई होगी, रात भर सोया है, रात भर सोया है, रात भर सोया है, चलो जाके जगाती हूं मैं। तो बस ऐसा नहीं हो कि वो जगाने आई है, दरवाजा भी खोल दिया और कन्हैया है नहीं, इसीलिए उनको दौड़ना पड़ता है। और लेट पर लेटते वैसे ही है जैसे रात्रि को जैसे लिटाया था माँ ने, और चल रहा है गाढ़ निद्रा में, हाँ रात को सोया है हा? तो फिर उठी उठी गोपाला शुरू होता है यशोदा का, नंद के लाला अरुणोदय धाला तो नहीं लेकिन होने वाला है, उठो गोपाला। और वहां कीर्तिदा बरसाने में वृषभानुपुर में राधा को जगाने पहुंचती है, तो उसको भी वहां पहुंचना होता है ताकि इस रहस्य का उद्घाटन न हो कि वे रात्रि को नहीं थे वहां। तो दोनों जग जाते हैं, दोनों को जगाया जाता है और उनकी फिर प्रातःकालीन उषाकालीन लीलाएं प्रारंभ होती है। नंदग्राम और बरसाने में आज भी वहां के मंदिर में जो विग्रह है उनको जगाया जाता है, उषा काल में, और उठते ही स्नान इत्यादि क्रियाएं होती है और भगवान जाते हैं दूध दोहना गौशाला में जाते हैं। हर रोज की बात है, हर उषा काल में जाते हैं, दूध दोहने का कार्य होता है। इतने में बरसाने से नंदग्राम राधा भी पहुंच जाती है, यशोदा को मदद करती है नाश्ता प्रसाद के लिए, कुछ पकवान बनाना है तो राधा के हाथ का अन्न, यशोदा चाहती है राधा के हाथ का भोजन तो बड़ा मेरे पुत्र को बहुत पसंद आता है, राधा के हाथ का भोजन। और इसलिए भी वो राधा के हाथ का भोजन कन्हैया को खिलाना चाहती है क्योंकि वह जानती है कि राधा को विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया तुम ऐसी बढ़िया पाकशास्त्र जानोगी और तुम्हारे हाथ का भोजन जो खाएगा वो कभी बीमार वगैरह नहीं होगा। यशोदा सोचती थी मेरा बालक निरोगी रहेगा, ये नहीं जानती कि इनके शरीर कृष्ण के शरीर में रोग संभव ही नहीं है, लेकिन वात्सल्य है इसीलिए ऐसा सोचती है। इसीलिए बहुत बारंबार बुलाती है राधा को भोजन पकाने के लिए प्रातः काल में, और फिर अपराह्न काल में भी राधा आती है भोजन बनाने के लिए नंदग्राम। तो दूध धोने के उपरांत फिर नाश्ता प्रसाद, राधा को भी महाप्रसाद प्राप्त होता है। इतने में बन जाने का समय होता है, भगवान के मित्र आते हैं और देखे उठो उठो तैयार नहीं हो तुम, अरे यू इन माया कृष्णा, यू आर इन माया, तैयार नहीं हो, हम कब से हम तैयार हुए तुम्हारे घर तक गायों के साथ चल के भी आए और तुम तैयार नहीं हो। वैसे कन्हैया बहुत पहले के तैयार थे या तैयार हो सकते, लेकिन यशोदा बड़ी देर लगाती रहती है। यशोदा का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक घंटे वो अपने साथ बिताए, इसलिए कुछ श्रृंगार पहनाती है, फिर थोड़ा आईना दिखाती है या स्वयं ही देखती है, नहीं अच्छा नहीं उतार देती, सारे वस्त्र उतार देती है, दूसरा सेट ले आओ, पहना रही है पंजन पहनाया, ये पहनाया वो पहनाया, ये अच्छा नहीं है दूसरा ले आओ, ऐसा समय बिताती रहती है। इसीलिए भाई अरे इन माया, आई एम नॉट इन माया, माई मदर मम्मी, माई मम्मी मुझे निकालो यहां से। कृष्ण भी बड़े उत्कंठित रहते हैं, कितने सारे घंटे प्रातः काल उषा काल और प्रातः काल के तो नंद बाबा यशोदा के साथ तब बिताए, लेकिन उनको लगता है क्यों ना आज जाओ नहीं, तुम रहो घर में रहो, लेकिन कृष्ण तो जाना चाहते हैं और मित्र भी तैयार है। सो 8:30 फिर सारी तैयारी होती है, लंच पैकेट भी बन गया, तो पहले श्रृंगार में देर लगाई, फिर भोजन बनाते बनाते है ना, ये पकोड़ा रह गया, ये रह गया, वो रह गया, ये चटनी कहाँ है, ये चटनी अच्छी नहीं दूसरी बना लो। लाइक दिस तो फिर टेंथ एट्थ तो ये दो ढाई घंटे का जो समय है जिस जो पूर्वान्न कहलाता है मध्यान्ह के पहले का काल पूर्वान्न ये काल अपने मित्रों के लिए है अपने सखाओं के लिए है गायों के लिए भी है गायों के साथ भगवान का वात्सल्य है वात्सल्य भाव एक मैया को तो घर में छोड़ के आए यशोदा को और वैसे यशोदा का ही कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव नहीं है ब्रज की सारी बुजुर्ग गोपियां कृष्ण को अपना लाला समझती है या उन्हीं उनका भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है इसलिए कभी कभी उस कभी कभी क्या सदैव सोचती है पुत्र क्या हमको भी कभी ऐसा पुत्र मिलेगा कन्हैया जैसा तो कृष्ण जान गए हाँ हाँ ये माताएं भी चाहती मुझे पुत्र के रूप में तो क्या किया जाए और वो गाय भी चाहती है कृष्ण को अपने बछड़े बछड़े जैसा वात्सल्य कृष्ण के साथ वो दिखाना चाहती करना चाहती है इस बात को भी नोट किया है कृष्ण ने तो फिर वो ब्रह्मा को बीच में डाल दिए वो ब्रह्मा की करतूत थी ब्रह्मा आए उन्होंने क्या किया भगवान के सारे मित्रों की चोरी की सारे बछड़े भी चोरी किए और एक साल भर के लिए गुफा में कहीं दूर अपने धाम में उनको छिपा के लौट के आए तो एक वर्ष बीत चुका था तो एक साल भगवान या वृंदावन के सारे बालक कौन थे कृष्ण थे वृंदावन के सारे बछड़े कृष्ण थे क्योंकि कृष्ण जानते थे ये सारी गाय चाहती है कि मैं उनका दूध पीऊं दूध धोने के बाद फिर उसको उबाल के और फिर किस प्याले में भर के पीना उनको पसंद नहीं हो से सीधा क्यों ना हमारे थनों का कृष्ण दूध क्यों नहीं पीते सीधे जैसे हमारे बछड़े पीते हैं वैसा कब पिएंगे तो एक साल भर के लिए सारे जो बछड़े थे गौशालाओं में सारे ब्रज के गौशालाओं में वे साक्षात कृष्ण थे और गाय के थनों का दूध सीधे पी रहे थे और हर घर में जो बालक थे वे सभी बालक कृष्ण थे सभी माताओं के गोद में जो बालक थे वो साक्षात श्री कृष्ण और जैसे एक महीना बीत गया दो चार छह महीने बीत गए कृष्ण ही अब बालक बने थे ये बालक बने थे तो इन सारे माताएं ऐसा अनुभव करने लगी पहले तो वो सोचती थी ये मेरा बालक है वो कृष्ण है वो यशोदा का लाला है ऐसा विचार ये मेरा बालक वो यशोदा का बालक ये मेरा बालक वो बालक वो पड़ोसी माता का वो बालक है लेकिन एक साल का जो अवधि थी चार छह आठ दस महीने बीत गए तो क्या अनुभव करने लगी माताएं सारे ब्रज की माताएं उनको कोई भेद अनुभव नहीं हो रहा था ये मेरा बालक है और वो यशोदा का बालक है वो और कोई बालक है ये भाव उनके मन में आना बंद हो गया क्यों एक ही थे सभी बालक एक ही कृष्ण ही थे इसलिए ये मेरा बालक ये यशोदा का बालक ये पड़ोसी माता का बालक ये भेद नहीं रहा क्योंकि भेद था ही नहीं सारे बालक कृष्ण थे तो 8:30 to 10:30 ये जो 8:30 to 10:30 का समय जैसे अब हो गया है उस घड़ी के अनुसार और 3 मिनट बाकी है मेरे घड़ी में तो 31 मिनट हो गए तो तो इस समय आपको स्मरण करना है तो कृष्णा अपने मित्रों के सखाओं के साथ है, गायों के साथ है, तो गोचारण लीला और सखाओं के साथ कई भिन्न भिन्न उनके चित्र विचित्र लीलाएं, खेल खेलने का ये समय है। तो फिर 10:30 बजे एक दो मिनट में भगवान वहां से बड़े युक्तिपूर्वक वहां से जाएंगे राधा कुंड की, राधा कुंड को जाते हैं और गोपिया कुसुम सरोवर पहले आती है, पुष्पों का चयन होता है, कई सारी मालाएं बनाती है, पुष्प गुच्छ बनाती है, वैजयंती माला बनी है, वो भी प्रस्थान करती है और कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती है। तो भगवान वहां पहुंच जाते हैं फिर 10:30 से लेकर 3:30 बजे तक वहां सर्वोत्तम स्थल जो है वृंदावन में, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि वहां कृष्ण जन्मे मथुरा में, मथुरा से भी श्रेष्ठ है वो 12 वन, क्योंकि वहां भगवान ने अपनी लीला खेली, 12 वनों से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन को अपने उंगली पर धारण किया 7 दिन 7 रात्रि तक, और उस गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड, कि राधा का कुंड है, भगवान को राधा जितनी प्रिय है उतना ही उनका कुंड भी भगवान को प्रिय है। तो राधा कुंड से और कोई ऊंचा स्थान नहीं है, तो वहां राधा कृष्ण पहुंच जाते हैं, गोपिया है और राधा कुंड के अलावा उन राधा कुंड के तट पर कई सारे कुंज है, अष्ट सखियों के, सुदेवी का, रंग देवी का, रत्न बाद में उसको आ जाते देखते हैं, फिर विशाखा का कुंड है, ललिता का है, चंपकलता का है, तुंग विद्या का है, चित्रा का है और एक रह गया कौन सा, इंदुले का, वेरी गुड, ये भूल जाता हूं मैं, न जाने इंदुले का मुझसे नाराज है क्या, इंदुलेखा का नाम मैं भूल जाता हूं। तो इन अष्ट सखियों के जो प्रधान सखिया है उनके भी कुंज है, आजकल तो हम उनको देखते नहीं, एक ललिता कुंड हम देखते हैं, एक राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड है, लेकिन और 7 कुंड भी, कुंज भी वहां होने चाहिए थे, है भी है, लेकिन हम उस भौम वृंदावन में हम उन कुंजों को नहीं देखते, भगवान के नित्य लीला के जो निकुंज है वहां तो 8 कुंज है और 8 कुंजों में अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग पेड़ पौधे पंछी है, हर कुंज में अलग अलग सीजन है, एक में वर्षा ऋतु है तो दूसरे में शरद ऋतु है तो तीसरे में ग्रीष्म ऋतु है, तो जैसा चाहेंगे भगवान अपने पसंद का ऋतु को का चयन कर सकते हैं, उस वांछित इच्छित ऋतु के अनुसार एक विशिष्ट कुंज में प्रवेश कर सकते हैं। तो अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग मंच सेटिंग है और अलग अलग क्रीड़ाएं पे झूला हो रहा है, झूलन यात्रा हो रही है, तो कोई और कोई क्रीड़ा हो रही है, कोई नृत्य हो रहा है, वाद्य बज रहे हैं या जल विहार हो रहा है, जल क्रीड़ा, नौका विहार हो रहा है, तो इस प्रकार की ये भिन्न भिन्न लीलाएं 3:30 बजे तक चलती रहती है। उसके उपरांत पुनः भगवान अपने मित्रों के और गायों के साथ हो जाते हैं और मित्रों के साथ और खेल सखा भाव यहां मध्याह्न के समय माधुर्य लीला और फिर अब सख्य भाव गोचारण लीला कभी गोवर्धन में तो कभी ये सब लीलाएं केसी घाट बंसी बट द्वादश कानान जहां सब लीला कैला श्री नंद नंदन सभी द्वादश काननों में वनों में भगवान की भिन्न भिन्न लीलाएं होती सभी वनों में भगवान की लीला तो गोचारण लीला कभी इस वन में कभी कभी मधुबन में तो कभी ताल वन में तो कभी कुमुद वन में तो कभी बहुला वन में तो कभी वृंदावन में तो कभी काम वन में तो कभी खादीर वन में कभी भद्र वन में तो कभी भांडीर वन में कभी श्री वन में कभी महावन में उसके पहले एक रह गया लोह वन में इस प्रकार ये द्वादश काननों में भगवान अपनी लीला संपन्न करते हैं गोचारण लीला या फिर रात्रि की भी जो माधुर्य लीला है फिर अब संध्या काल का समय जब आता है तो भगवान लौट रहे हैं वृंदावन की ओर लौट रहे मतलब नंदग्राम की ओर लौट रहे हैं सभी गाय आगे आगे फिर सारे मित्र चल रहे हैं गोप कीर्ति ही तो मित्र सारे गान कर रहे भगवान का भगवान मुरली बजा रहे हैं तो सभी प्रसन्न है वृंदावन के पेड़ पौधे पंछी उनका भी रंजन हो रहा है ब्रज जन रंजन सारे ब्रज का जैसे कृष्ण आगे बढ़ रहे सबका रंजन सभी को आह्लाद देते हुए कृष्ण ब्रज की ओर नंदग्राम की ओर गायों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आकाश में देवता आ जाते हैं भगवान के दर्शन और मुरली का मुरली की नाद के श्रवण के लिए सुनने के लिए भगवान की लीलाओं का दर्शन करने हेतु इस बात का कृष्ण को ही पता होता है तो कृष्ण जा रहे और साथ में गए और मुरली बजाई गए बाय और उनको पता क्या वो ऊपर क्या है पागल है क्या उनको तो कोई नहीं दिखाई दे रहा लेकिन कृष्ण कह रहे शिव जी ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण उनका अभिनंदन अभिवादन करते हुए तो इतनी सारी गायें जा रही है वृंदावन की वो हल्की पुल्की जो धूली है गायों के खुरों से आकाश में उड़ती है और इतनी सारी धूल उसके बादल बने हैं वैसे ये बेला है गोधूली बेला इस बेला को इस समय को गोधूली बेला गो गाय के चलने से जो धूल उड़ती है गोधूली बेला तो यशोदा देखती आकाश में तो धूल देखने से उसको पता चलता यहां तक आ गए तो जैसे आगे गाय बढ़ रही तो उसके साथ तो धूल के बादल भी आगे आगे जा रहे हैं तो उससे कितने दूर है उसका पता चलता है तो फिर यशोदा भी तैयारी करती है भगवान के स्वागत की तो फिर कन्हैया पहुंच जाते हैं ब्रज में, वृंदावन नंदग्राम प्रवेश हो रहा है। तो गोपियां पहुंची है, पुनः कृष्ण का दर्शन करना चाह रही है। हर समय उत्कंठित होती है भगवान को मिलने के लिए, और हर मिलन उनको लगता है शायद पहला ही मिलन है, पहले कभी देखे ही नहीं। अभी अभी तो कुछ घंटे पहले, कितने सारे घंटे बिता के आई है, लेकिन उनके कृष्ण के बिना तो शून्यायितम जगत सर्वम, गोविंद विरहीन की बात है। एक क्षण नहीं देखा तो मानो कई कई युग बीत चुके हैं, हमने देखा नहीं उसका नहीं आको। तो हुआ तो धीरे धीरे कृष्ण आगे नंदग्राम नंद भवन की ओर आगे बढ़ते हैं, और प्रवेश द्वार पर ही नंद बाबा, यशोदा और कई ब्रजजन वहां एकत्रित होते हैं, और कृष्ण बलराम का वहां स्वागत होता है, आलिंगन होता है, माताएं चूमती है, सूंघती है उनके बालों को। गाय पहुंच जाती है गोष्ठों में, गौशालाओं में, बालक पहुंच जाते अपने अपने घरों में, कृष्ण बलराम पहुंचते हैं नंद भवन में। तो तुरंत ही उनके सारे दिन के जो वस्त्र है धूल से भरे हैं, चेहरे पर भी धूल है, वृंदावन की धूल थोड़ी इसमें सफेदी होती, थोड़ी थोड़ी सफेद लगती है, वो धूल उनके चेहरे पर है। इसीलिए कौन से रंग के भगवान लगते, पांडु रंग, पांडु रंग, कौन सा रंग, पांडु रंग, पांडु रंग मतलब वह रंग जिस रंग की धूली है वृंदावन की, जिस जो धूल भगवान के बालों पर, मुख पर, ऐसे वस्त्रों पर भी सारी पांडु रंग। तो सारे वस्त्र, फिर भगवान का अभिषेक होता है, स्नान होता है, फिर पुनः दूध धोने का समय, प्रातः काल में धोया था, अब पुनः दूध धोएंगे, धोने का काम कृष्ण बलराम करते हैं। फिर लौटते तो फिर भगवान का डिनर तैयार होता है, प्रसाद देते हैं। फिर प्रदोष काल में नंद महाराज कृष्ण बलराम को रंग भवन में ले जाते हैं, जहां के रंग मंच पर विविध मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। और वहां से जब कृष्ण को घर ले आते हैं तो विश्राम का ही समय हो जाता है, तो यशोदा का दूध, हॉट मिल्क तैयार है, और कुछ कहानियां भी तैयार है। तो कहानियां सुनाती हुई, दूध पिलाती हुई कृष्ण को सुलाती है, और स्वयं भी फिर विश्राम करने दौड़ती है। तो इस प्रकार ये भगवान के उषा काल, प्रातः काल, पूर्वान्न, मध्यान्न, अपराह्न, संध्या काल, प्रदोष और रात्रि काल, अष्टकालीय लीला का ये संक्षिप्त स्मरण है। यह श्रवण कीर्तन है ताकि उन लीलाओं का हम स्मरण कर सकते हैं। हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओ।
परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। तो सभी भक्त अभी शाम को 6 बजे वापस कथा होगी, तो टाइम पे आइए। और अभी सबके लिए प्रसाद है।
दिया था मुझे, तो लौटाना होगा।